दिन भर 16 सितंबर दिन रविवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जदयू में शामिल, राजद ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एक चीज इससे साफ हो जाएगी, जदयू जो है सो हताश और निराश हो गई है इस बार, तो इसलिए ले हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर आकर यहां पर क्या तीर मारेंगे।
जेएनयू में फिर से लाल सलाम, चारों सीटों पर लेफ्ट यूनिटी की जीत। और सुनेंगे विशेष बातचीत कांग्रेस नेता हरीश रावत से।
हुल्लर ब्रिगेड ने जताने की कोशिश की कि राहुल पप्पू है, लेकिन उस पप्पू ने जो है यह हालत कर दी है, सारी भाजपा के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं और रात दिन उनको राहुल गांधी दिखाई दे रहा है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। पूर्वी एशिया से होकर गुजर रहे एक भीषण तूफान के कारण फिलीपींस में अब तक कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। अब यह तूफान चीन की ओर बढ़ गया है। टाइफून मांकुट ने उत्तरी फिलीपींस में भारी तबाही मचाई है। ज्यादातर मौतें भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण हुई है। एक भूस्खलन के कारण फिलीपींस में बेंगवेट प्रांत में खदानों में काम करने वाले लोगों की रिहाइश दब गई। रिपोर्टों के मुताबिक यहां 30 लोगों की मौत हुई है और कई लापता हैं। अब तक इस तूफान ने अब चीन के प्रांत ग्वांगडोंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, मैं उनका दर्द महसूस कर सकता हूं। कुछ लोग इसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। मुझे नहीं पता कि इसे एक्ट ऑफ गॉड कैसे कहा जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस में इसी शब्दावली को इस्तेमाल किया जाता है। ये थे फिलीपींस के राष्ट्रपति के शब्द। अमेरिका में चक्रवाती तूफान फ्लोरेंस के कारण उत्तर और दक्षिण कैरोलिना में अब तक कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब यह तूफान धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, मगर भारी बारिश के कारण बाढ़ आने का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के आदेश जारी किए हैं। 20,000 से ज्यादा लोग शिविरों में रह रहे हैं। उत्तरी कैरोलिना में फेटविल के मेयर पिच कॉल्विन ने लोगों को चेताया कि अगर वे सुरक्षित स्थानों की ओर नहीं गए तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है।
This is a serious, life-threatening matter.
अगर आप इन इलाकों में हैं तो ये जानलेवा हो सकता है। अगर आप इस जरूरी बचाव अभियान को नजरअंदाज करके यहाँ से ना निकलने का फैसला करते हैं तो आपको कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, जैसे कि अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत संभव है कि आपकी जान चली जाए। ये थे फेटविल कस्बे के मेयर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की सरकार का कहना है कि वो हर साल होने वाले उस म्यूजिक फेस्टिवल को हमेशा के लिए बंद कर देगी जहां पर 2 लोगों की संदिग्ध ड्रग्स ओवरडोज के कारण मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दर्जनों लोग अस्पताल में हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। सिडनी में होने वाले डेफकॉन 1 फेस्टिवल में टेक्नो, हाउस और ट्रांस म्यूजिक प्ले होता है। पुलिस का कहना है कि 700 लोगों ने इस कार्यक्रम में ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं को लेकर डॉक्टरों की सहायता मांगी है। कई लोगों के खिलाफ ड्रग्स को लेकर मामला भी दर्ज किया गया है। कॉन्सर्ट के आयोजकों का कहना है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फलस्तीनी किशोर ने एक इसराइली की चाकू मारकर हत्या कर दी है। यह घटना एक शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर हुई। इसराइली सुरक्षा बलों का कहना है कि एक नागरिक ने इस हमलावर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। यह घटना बेथलेहम के दक्षिण में यहूदियों की रिहाइश में हुई। फलस्तीनियों के इसराइलियों पर इस तरह के हमले 2015 में शुरू हुए थे, मगर हाल ही में ये तेज हो गए हैं। चीन ने ताइवान पर उसकी जासूसी की कोशिशें तेज करने का आरोप लगाया है। एक दिन पहले ही चीनी सरकार ने ताइवान में पढ़ रहे अपने छात्रों को चेताया था कि जासूस उन्हें प्यार, पैसा और दोस्ती के बहाने निशाना बना रहे हैं। ताइवान भी चीन पर गुप्त अभियान चलाने का आरोप लगाता है। चीन के नेता ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानते हैं और दोनों के रिश्ते फिलहाल अच्छे नहीं कहे जा सकते। सीरिया में सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में स्थानीय परिषद के चुनावों का आयोजन किया जा रहा है। 7 साल में पहली बार यहां कोई चुनाव हो रहे हैं। 40,000 से ज्यादा उम्मीदवार 20,000 सीटों पर खड़े हुए हैं। सीरिया में सरकारी बल विद्रोहियों को पीछे हटाते जा रहे हैं और राष्ट्रपति बशर अल असद अब सीरिया के 2/3 हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर चुके हैं। प्रशासन चुनाव करवाने को इस बात का संकेत बता रहा है कि देश फिर से सामान्य हालात की ओर लौट रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने इस बात की पुष्टि की है कि जब वो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से अगले हफ्ते तीसरी बैठक में हिस्सा लेंगे तो उनके साथ देश के शीर्ष बिजनेसमैन भी साथ होंगे। ये पहला मौका है जब दोनों देशों के नेता बॉर्डर के बजाय उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में बैठक करेंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी। प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। प्रशांत किशोर को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान के रणनीतिकार के तौर पर ख्याति हासिल हुई थी। इसके बाद अलग अलग चुनावों में उन्होंने जदयू और कांग्रेस को भी अपनी सेवाएं दी थी। पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
राजनीति के खेल में असंभव को संभव करने की महारत रखने वाले बिहार के बक्सर जिले में जन्मे प्रशांत किशोर ने बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। वर्ष 2015 में उन्होंने महागठबंधन की जीत के लिए जो भी किया है वह इतिहास हो चुका है। वर्तमान तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2019 के संसदीय चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए पीके की भूमिका को नई धार दे रहे हैं। जाहिर है अब पीके रणनीतिकार नहीं बल्कि नेता के रूप में जेडीयू की सेवा करेंगे। उनके सामने अब यह लक्ष्य होगा कि अब बिहार में जदयू को एनडीए के कोटे में ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे मिलें और पार्टी के खाते में आई सीटों पर सफलता कैसे मिले। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण बताते हैं कि प्रशांत किशोर पूर्व में भाजपा और कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन उनका तालमेल नीतीश कुमार से ज्यादा मिलता रहा है।
ऐसे में जाहिर है कि वो अपने लिए जमीनें तलाश रहे होंगे। उनको जदयू सर्वश्रेष्ठ विकल्प इसलिए लगा होगा क्योंकि वो इसके पहले नरेंद्र मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं और कांग्रेस के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी काम कर चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा पाया है कि कुछ नीतीश कुमार के साथ उनकी ट्यूनिंग ज्यादा बेहतर रही, तो दोनों तरफ से हमें लगता है कि रजामंदी बनी इस चीज को लेकर के, और वो उसकी परिणति आज उनके जदयू में शामिल होने के रूप में हम लोग देख रहे हैं।
महागठबंधन सरकार बनने के बाद वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अपना सलाहकार बनाया और कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया था। तब प्रशांत के बढ़ते कद से महागठबंधन में असंतोष की चर्चाएं भी गर्म रही थीं, लेकिन किसी ने कुछ बोलने का साहस नहीं किया था। पिछले चुनाव में जदयू के साथी रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चित्रंजन गगन प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किए जाने को पार्टी की हताशा बताते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, एक ही चीज से साफ हो गया कि जदयू जो है सो हताश और निराश हो गई है। इस बार उसे विश्वास हो गया है कि जैसे बिहार में हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है और तेजस्वी के तेज के सामने जो है सो हम टिक नहीं पाएंगे, तो इसलिए लिया है प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर आकर यहाँ पर क्या तीर मारेंगे।
जाहिर है प्रशांत किशोर का पैंट शर्ट छोड़कर खादी का कुर्ता पैजामा पहनने लगना शायद सफलता के कुछ और रंग दिखाने वाला हो सकता है। नीरज सहाय, बीबीसी, पटना।
दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर वामपंथ की जीत हुई है। चारों सीटों पर लेफ्ट यूनिटी के उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। जेएनयू में शुक्रवार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए मतदान हुए थे। इस बार जेएनयू में आईसा, एसएफआई, डीएसएफ और एआईएसएफ ने लेफ्ट यूनिटी के बैनर तले साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। नई दिल्ली से अनंत प्रकाश की रिपोर्ट।
नई दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में ये नारे आम हैं, लेकिन रविवार को ये विशेष उपलक्ष में लगाए गए। वजह थी छात्र संघ के चुनाव में वामपंथी एकता की जीत। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में वामपंथी संगठनों ने केंद्रीय पैनल की सभी चार सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज की है। सभी सीटों पर दूसरे स्थान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार रहे, लेकिन इस बार जीत का अंतर पिछली बार के मुकाबले कहीं अधिक रहा। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर एन साई बालाजी ने 1179 वोटों और सारिका चौधरी ने उपाध्यक्ष के पद पर 1680 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है।
ललित पांडे 982, एन साई बालाजी 2161, निधि मिश्रा 59। आई हेयरबाय डिक्लेयर एन साई बालाजी इलेक्टेड।
जेएनयू की एक पूर्व छात्रा सुकंदा कहती हैं कि ये चुनावी नतीजे बेहद खास हैं।
देखिए, पूरे देश में जब भाजपा सरकार ने खौफ का माहौल फैलाया है, इतना मॉब लिंचिंग किया गया है, पूरे देश में एजुकेशन जो है उसके नाम पे पूरा प्राइवेटाइजेशन चला दिया है, पूरे देश भर के युवाओं का कोई नौकरी नहीं है, तब जेएनयू का ये मैंडेट जो है ये पूरे आने वाला 2019 चुनाव के लिए और ऐसे देश भर के माहौल के लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाता है कि पूरे देश भर में ये लोग ऐसे अगर करेंगे, ऐसे गुंडागर्दी करेंगे, कोई नौकरी नहीं देंगे युवाओं को, स्टूडेंट्स को कोई चीप और क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, तो उन लोगों के साथ ऐसे ही होगा।
जेएनयू की गिनती देश के बेहतरीन संस्थानों में होती है, लेकिन ये अपनी खास संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, जिसमें संवाद और चर्चा को अहम माना जाता है। अध्यक्ष पद पर भारी अंतर से जीत दर्ज करने वाले एन साई बालाजी कहते हैं कि एक अध्यक्ष के तौर पर उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता इस संस्कृति को जिंदा रखने की होगी।
चार वाम संगठन एक साथ आए हैं, हम लोगों का बहुत अलग अलग विचार रहा, एक दूसरे के खिलाफ हमने बहुत कुछ बोला और हम अभी भी यूनिटी में रहने के बावजूद भी अपना राजनीति करते हैं। मुझे लगता है यूनियन में अगर इतना डाइवर्सिटी है कैंपस में जो बातचीत रखने का हो, या एबीवीपी खुद इस कैंपस में अगर मौजूद है, उसे सवाल पूछने से लेके उसे पूछे हुए सवाल का जवाब देने के लिए, उस स्पेस को बरकरार रखने का और उसको और बेहतर करने का प्रक्रिया लगातार करनी चाहिए। और अभी एक अटैक है उस स्पेस पे।
कैंपस में मजबूत होती एबीवीपी को रोकने के लिए इस बार चार वामपंथी छात्र संगठनों आईसा, एसएफआई, डीएसएफ और एआईएसएफ ने साथ मिलकर लेफ्ट यूनिटी के बैनर तले चुनाव लड़ा था। बालाजी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या इस जीत से चारों वामपंथी दलों के बीच विचारों की तकरार खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा,
मान लीजिए आप आंदोलन साथ में लड़ रहे हैं और चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे, फिर किस बात का आंदोलन होगा। और पिछले साल बहुत बड़ा हमला इस कैंपस में हुआ और सारे लोग एक साथ आए हैं, हमको लगा इस बार कि उस एकता को चुनाव में भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अगर बात रही कि डर का, मुझे लगता है कि आज जो मार्जिन है एवीपी को हराने का, अगर हम अकेले भी लड़ते तब भी एवीपी हारता, बट जो एक स्टूडेंट्स के बीच में एक जो सॉलिडारिटी है, एक जो सिंबलिज्म है, हम साथ मिलकर लड़े तो चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेंगे, मुझे लगता है उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग साथ हैं।
जवाहरलाल यूनिवर्सिटी लंबे समय से वाम राजनीति का गढ़ रहा है। जेएनयू ने देश को कई वामपंथी नेता दिए हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि 2014 के बाद से जेएनयू में एबीवीपी भी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। अनंत प्रकाश, बीबीसी, नई दिल्ली।
अब आज का विशेष साक्षात्कार। कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीबीसी से खास बातचीत में दावा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा और बसपा एक साथ आए तो भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी पर दोमुही नीति अपनाने का आरोप लगाया। सुनिए बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय से हरीश रावत की खास बातचीत।
देखिए 2019 में हमको जीतना चाहिए। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि 2019 में विल टर्न द टेबल, भाजपा हारेगी और सब लोकतांत्रिक पार्टियां जो है इस समय संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हो रही हैं।
आप जब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तो क्या वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आपको इशारा मिलता है? क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती है, आप लोग उसको फॉलो करते हैं।
नहीं,
जैसे आप असम के भी प्रभारी हैं, जिस तरह से एनआरसी आया
जी,
उसके बाद आपकी पार्टी बहुत दिन तक तो ये तय ही नहीं कर पाई कि रिएक्ट किस तरह से करना है।
मैं एनआरसी पे फिर से बात करूंगा, लेकिन पहले आपने मुझसे जो ये सवाल किया है कि वो मुद्दे क्या हैं, निश्चित तौर पर एजेंडा हम ही सेट नहीं कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ओवर डूइंग्स हैं वो कर रही हैं। आज देश के अंदर जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, असहिष्णुता का वातावरण है, आप से जो असहमत लोग हैं और वैचारिक तौर पर जो आप पर चोट कर रहे हैं, उनको इस दुनिया से ही विदा कर दिया जा रहा है। लव जिहाद से लेकर के मॉब लिंचिंग तक एक असहिष्णुता का वातावरण खड़ा कर दिया गया है, जबकि जो भारत की धरती है, सनातन धर्म है, वो सहिष्णुता की बात करती है। हमारी आज़ादी की लड़ाई जो अहिंसा पर आधारित है, सर्वधर्म संभाव की बात होती है जिस देश के अंदर, तो आज संवैधानिक लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए जनता भी इस समय जागरूक हो चुकी है।
लेकिन आप सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप लोग भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं।
मैं भी उस
भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों को काटने के लिए आप कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर ब्राह्मणों का डीएनए, ये क्या है? क्या आप खुद सेलेक्टिव नहीं हो रहे हैं?
नहीं, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा, एनआरसी का भी और ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आपने कही है। जो बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी अपने किसी भी वादे को, किसी भी बड़ी घोषणा को, 15 लाख से लेकर के 2 करोड़ नौकरियां हर साल से लेकर अच्छे दिन तक, किसानों की आमदनी दोगुना करना और उनके जितने प्रोग्राम रहे जिनको उन्होंने बड़े जोर शोर से चलाया, स्टैंड अप्स, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, ये कहीं धरती पर कोई चीज़ें उतर नहीं पाई हैं। इसलिए आज भारत का आम आदमी सवालिया बन गया है। आज जिस तरीके से रुपये की गिरावट जो है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि एक दिन लगता है जितनी आडवाणी जी की उम्र है उस उम्र तक जो है रुपया गिर जाएगा डॉलर के मुकाबले जो है। ये सारी स्थितियां चीख चीख करके कह रही हैं कि इस बार भारत जबरदस्त बदलाव के लिए वोट देगा। अब रहा सवाल जो आपने कहा, मैं पहले आपके सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात को कहना चाहता हूं। कांग्रेस हमेशा उदारता की बात करती रही है, सहिष्णुता की बात करती रही है, तो ये सब चीजें जो है सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं।
लेकिन आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो वो सनातन परंपरा का हिस्सा होगा, जब भारतीय जनता पार्टी करेगी तो वो वोट बैंक का हिस्सा
नहीं। देखिए, हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने हिंदू होने पर
जितना, लेकिन आप ये कहने की आपको जरूरत लगती है कि हमारे कांग्रेस में ब्राह्मणों का डीएनए है या
वही, जितना मुझको अपने खुद के हिंदू होने पर गर्व है उतना ही मुझको दूसरे के लिए भी सहनशील होना चाहिए यदि दूसरा व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है। भाजपा में वो सहिष्णुता का अभाव है, कांग्रेस में वो सहिष्णुता है, इसलिए जो हमारा डीएनए है ब्राह्मण समाज का उदार व्यक्ति माना जाता है।
लेकिन आपको ये लाइन अपनी पार्टी की ठीक लग रही है, जिस तरह से आपको सॉफ्ट हिंदुत्व पर जाना पड़ रहा है राहुल गांधी को, जैसे गुजरात पर वो गए तो मंदिर मंदिर उनको चक्कर लगाना पड़ा, आज वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं, क्या मैसेज आप देने की बात कर रहे हैं?
मैं आपके इन सब प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। हमारी लीडरशिप यदि दूसरे के धर्म पालन के लिए परिस्थितियां पैदा करती हैं तो वो स्वयं भी अपने धर्म को उसके प्रति आस्था मान रहा है। इंदिरा जी जो है रुद्राक्ष की माला धारण करती थी। राहुल जी पहले ही कह चुके हैं मैं शिवभक्त हूँ, और मैंने उनकी शिवभक्ति का स्वरूप देखा है जब वो केदारनाथ की यात्रा 20 किलोमीटर पैदल चल करके गए और जिस तरीके से केदारनाथ के सम्मुख जो है वो ध्यानस्थ हुए और मुझसे ये कहा कि रावत जी एक काम करिए।
जितना डिटेल आप रावत जी बता रहे हैं, क्या पब्लिक इस तरह से समझती है कि राहुल जी सनातनी हिंदू हैं, उदार हिंदू हैं और भारतीय जनता पार्टी का अलग वो मैसेज है, वो ये इसको कोरिलेट लोग नहीं करते हैं? जब आप चुनाव के पहले मंदिर मंदिर जाएंगे
आपका हिंदुत्व,
तो आपका हिंदुत्व अलग है, आप ये कहेंगे मैं उदार हूँ,
मगर हिंदुत्व का इस्तेमाल यदि आप दूसरे के धर्म को अपमानित करने के लिए करेंगे तो वो फिर हिंदू परंपरा के खिलाफ है। हम हिंदू परंपरा जो है देश की, जो सनातन परंपरा है, हम उसके साथ जुड़े हुए
हैं। जब आप धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आप एजेंडा सेट करके देते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? जब आपके अध्यक्ष मुसलमानों से मिलते हैं, एक बयान सामने आता है जो आपके पार्टी के लोगों के हवाले से आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में कहते हैं कांग्रेस अगर मुसलमानों की पार्टी है तो वो उनको मुबारक हो,
नहीं एक,
तो क्या आपको नहीं लगता कि जब आप इस तरह की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आप फॉलो कर रहे होते हैं?
आप किसी की बात को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, मोदी जी ने डिस्टॉर्ट किया। सत्यता यह है कि राहुल जी ने कहा कि हम देश के सभी धर्मों का, जिसमें मुस्लिम भी हैं, सबका आदर करते हैं। ठीक है, आस्था को व्यक्ति के क्यों राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस समय आप खुद बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया, उस समय आप इस तरह के मुद्दों में उलझते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो रियल इश्यूज हैं आप लोगों को वही उठाकर उन्हीं की बात करनी चाहिए? जिस तरह से केरल में बाढ़ आई और राहुल गांधी जिस समय यूरोप का दौरा कर रहे थे तो लोगों का ये सवाल था, जिस समय राहुल गांधी को केरल में होना चाहिए उस समय वो यूरोप का दौरा कर रहे हैं, जिस समय राहुल गांधी को, जो आपने रुपए की कीमत की बात की, तेल की बात तमाम लोग कर रहे हैं, उनको उठाना चाहिए तो वो यात्रा कर रहे हैं।
आप मुझको अपने इन सब सवालों का जवाब देने देंगे?
जी बिल्कुल।
तो एक पहली बात तो यह है कि आपकी जो व्यक्तिगत आस्था है उस व्यक्तिगत आस्था पर मैं सार्वजनिक जीवन में है दूसरों को सवाल उठाने का हक है, लेकिन व्यक्तिगत आस्था व्यक्ति का अपना धर्म है। तो राहुल गांधी जी से केवल इसलिए कि वो एक राजनीतिक दल के प्रमुख हैं उसको नहीं छीनना चाहिए। और जो मेन सवाल आज देश का जो एजेंडा है, विशेष तौर पर महंगाई के इशू पर, बेरोजगारी के इशू पर, आर्थिक सवालों पे, खेती के सवाल पर, इन सबको राहुल गांधी सेट करने का काम कर रहे हैं। आप उनके पार्लियामेंट के भाषण को सुनिए, जो जिस तरीके से उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अपनी बात रखी है, उन्होंने देश का जो भविष्य का एजेंडा है और कांग्रेस का जो भविष्य का एजेंडा है उसको आगे लाने का काम किया है। अब आपने मुझसे कहा कि जिस समय केरल में बाढ़ आई और आप यूरोप में हैं, यूरोप का एक शेड्यूल पहले से बना हुआ था, लेकिन वहाँ से आने के बाद वो सीधे, बल्कि कुछ छोटा सा अपने दौरे को कम करके सीधे केरल गए।
जब जरूरत थी, ये भी कहा जाता है कि सेल्फ गोल आप बहुत करते हैं, जैसे आपने पार्लियामेंट स्पीच की बात की, स्पीच की लोग जब तक तारीफ कर पाते वो जाकर गले मिले नरेंद्र मोदी से, लौट कर आए बैठे उन्होंने आँख मार दी, तो लोगों ने कहा कि ये एक सेल्फ गोल किया।
इसमें कोई सेल्फ गोल नहीं है।
अच्छा, आप इसको सेल्फ गोल नहीं मानते?
एक सेकंड, राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच को कंक्लूड करते वक्त कहा कि हम आपको हराएंगे मगर प्यार से हराएंगे, सहिष्णुता हमारा डीएनए है, और उसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए पार्लियामेंट की ये प्रैक्टिस है, आप जाकर के अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाते हैं। मोदी हक करे तो पार्लियामेंट्री है, और राहुल गांधी जब किसी को हक करे तो अनपार्लियामेंट्री है।
अगला सवाल मेरा ये है कि आपने कहा सारे दल एक साथ आ गए हैं, लेकिन कर्नाटक में आपने एक गठबंधन सरकार बनाई है, सिद्धारमैया जी के बार बार बयान आ जाते हैं कि मैं 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनूंगा, दूसरी तरफ से जेडीएस को लगता है कि उनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश में अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, जो आप एक प्लेटफॉर्म पर आने की सबकी बात कर रहे हैं, वो कैसे संभव आपको?
देखिए, हमारी पार्टी में ये अधिकार कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिया जा चुका है, और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि हमारे सामने इस समय कौन नेतृत्व करेगा ये नहीं है, हमारे सामने ये है सब मिल करके जो संसदीय लोकतंत्र के दुश्मन हैं उनको पराजित करें। उन्होंने कहा हम सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमने उसकी एक वानगी भी दिखा दी जेडीएस को सपोर्ट दे करके, हमने वो हिच जो एक था कि कांग्रेस देगी नहीं लेगी सपोर्ट, हमने कहा नहीं, हम इस मामले में उदार हैं, चलिए आप आ
तो आप उत्तर प्रदेश में भी उदार हैं।
अच्छा, नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये बिल्कुल साफ है, तय हमारे सपा और बसपा के साथियों को करना है। यदि सपा बसपा कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर आती है तो उत्तर प्रदेश से भाजपा एक सीट भी नहीं जीतती है। भाजपा को पराजित करने के लिए गंभीर है तो हमको एक जगह आना पड़ेगा, बल्कि अजीत सिंह जी को भी साथ लेना पड़ेगा, और हम कहीं पर बढ़पन की भावना से बात नहीं कर रहे हैं। मगर एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कांग्रेस ने जब भी गठबंधन का नेतृत्व किया है हमने बहुत सक्सेसफुली किया है और सबका आदर किया है।
आपकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि आपकी पार्टी में ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो जनाधार वाले नेता होते हैं उन पर राज्यसभा वाले नेता हावी रहते हैं।
राज्यसभा में होना कोई इसका अर्थ ही नहीं कि उनका जनाधार नहीं है, और पार्टी के अंदर ही जो जहाँ काम करना चाहता है, अब हम अपने राज्य में अपने लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं तो उसका मौका मिलता है। आपने मुझसे एक सवाल एनआरसी पर किया था, एनआरसी पर मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा एनआरसी का उपयोग देश को फिर से, वो एक एजेंडे के रूप में समझ रहे हैं कि देश को बांटने के लिए हम उपयोग करें, हम उसको ये नहीं करने देंगे।
रावत साहब, मेरा सवाल ये था कि आप लोग रिएक्ट करने में इतना टाइम क्यों लेते हैं, कि शुरुआत में आप समझ नहीं पाते या तो मुद्दों को कि हमें रिएक्शन क्या देना है कांग्रेस पार्टी के स्तर पर।
देखिए,
ये आपकी पार्टी पर बार बार आरोप लगता है, जैसे जब मुद्दा सामने आता है, जब मुद्दा सामने आता है तो आपकी पार्टी कंफ्यूजन की स्थिति में दिखती है।
कोई भला आदमी ऐसे में क्या रिएक्ट करेगा जब राज्यसभा में एक सीट पर बैठ करके गृहमंत्री कह रहे हैं बगल की सीट पर बैठ करके कि एनआरसी की प्रोसेस अब भी ऑन है, 2 स्टेजेस और हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन 40 लाख लोगों में से बहुत सारे लोगों का नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में आ जाएगा। और बगल की सीट से जब अमित शाह बोलते हैं तो वो कह देते हैं ये 40 लाख लोग तो घुसपैठिए हैं, आप घुसपैठियों के साथ ही हैं, घुसपैठियों के विरोध में हैं। तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कहने वाले लोगों से, दो मुही चाल चलने वाले लोगों से रिएक्ट करने में राजनीतिक दलों को हमेशा बड़ी सोच समझ के करना पड़ता है। इसलिए हमने सोच समझ करके बहुत एक कंसिडर्ड व्यू लिया है, और हम एनआरसी की प्रोसेस के साथ हैं, और उस प्रोसेस में हमारी कोशिश है कि कोई जो है जेन्यून इंडियन सिटीजन जो है एनआरसी से बाहर न रह जाए।
जी, बस एक आखिरी सवाल, 2019 सामने है, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी, जिन्हें तमाम आपके विरोधी कहते हैं कि इनको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, बल्कि टीआरसी चीफ जो चीफ मिनिस्टर भी हैं उन्होंने तो उन्हें मस्खरा भी कह दिया, तो आपको क्या लगता है कि पूरा जो विपक्षी गठबंधन है राहुल को अपना नेता मानेगा?
हमें बड़ी तकलीफ है कि राजनीति में चंद्रशेखर राव जैसे या जो है आज गिरिराज सिंह जैसे या कोई शुक्ला जैसे कुछ ऐसे लोग राजनीति में आ गए हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रति सम्मान नहीं जता सकते हैं, इतनी गैर जिम्मेदाराना असहिष्णु टिप्पणियाँ करती हैं। और राहुल गांधी कोई एक दिन की प्रोडक्ट है? और राहुल गांधी जी ने पिछले अपने 15 सालों के इस कैरियर में ये दिखाया है कि वो हर चीज़ को वो अर्न करना चाहते हैं, अपनी मेहनत और परिश्रम से अपने को खड़ा करना चाहते हैं। अब देख लिया ना भाजपा वालों ने, सारे आरएसएस के हुल्लड़ ब्रिगेड ने जताने की कोशिश की कि राहुल पप्पू है, लेकिन उस पप्पू ने जो है आज यह हालत कर दी है, सारी भाजपा के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं और रात दिन उनको राहुल गांधी दिखाई दे रहा है, राहुल फोबिया से ग्रस्त हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ चंद्रशेखर राव को भी अपना ये गिमिक और ये शब्द बड़ा महंगा पड़ेगा और तेलंगाना के लोग हमको रिपे करेंगे जो हमने तेलंगाना बनाया। अब कांग्रेस की बारी है और हम तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।
कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय। और अब वक्त है खेल समाचारों का। और खेल समाचारों का वक्त हो चुका है और खेल समाचारों के लिए आदेश कुमार गुप्त इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बताइए आदेश जी।
जी कुलदीप, अगर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की बात की जाए तो दुबई में आज ग्रुप ए में पाकिस्तान और हांगकांग आमने सामने हैं, जहां थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने 37.1 ओवर में, यानी काफ़ी कम ओवर कहे जाएंगे क्योंकि निर्धारित 50 ओवर का मुकाबला है, उसमें हांगकांग को 116 रन पर समेटा और अब उसके सामने बहुत आसान लक्ष्य होगा 50 ओवर में 117 रन बनाने हैं। दरअसल इसके बावजूद हांगकांग की थोड़ी सी तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि एक समय हांगकांग के 5 विकेट केवल 44 रन पर गिर चुके थे और उसके बाद किंचित शाह ने 26 रनों की पारी खेली, उससे पहले एजाज खान ने 27 रन बनाए, कप्तान अंशुमन रथ ने 19 रन बनाए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस तरह के जो मुकाबले हैं वो कोई विशेष दिलचस्पी पैदा नहीं कर रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने जैसा प्रदर्शन किया, भारत का पाकिस्तान से मुकाबला होना है, थोड़ी नर्वसनेस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस समय महसूस कर रहे होंगे?
जी देख लिए, नर्वसनेस नहीं क्योंकि काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हाथ खोलने का मौका मिला है और निश्चित रूप से वाकई वो प्रशंसा के हकदार हैं। जिस तरह से उस्मान खान ने 3 विकेट लिए, फहीम अशरफ ने 1 विकेट लिया, हसन अली ने 2 और शादाब खान ने 2 विकेट लिए, अब ये डिपेंड करता है कि हांगकांग को जितने भी मौके इस टूर्नामेंट में मिलते हैं वो किस तरह से भुनाता है और कुछ अच्छा प्रदर्शन करता है तो उससे टूर्नामेंट में भी रोमांच पैदा होगा। जैसे कल बांग्लादेश ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में श्रीलंका को हराया, कल ज़रूर मुकाबला दिलचस्प होगा जहाँ अफगानिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। लेकिन इधर भारत की महिला मुक्केबाज और 5 बार के विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने अपने मुक्कों का दम दिखाते हुए पोलैंड की ग्लिवाइज में महिलाओं के 13वें सिलसियान ओपन मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। 48 किलोग्राम के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली एमसी मैरी कॉम ने फाइनल में कजाकिस्तान की एग्रिम कसेने युवा को मात दी। तो तारीफ करनी होगी कि उम्र के इस पड़ाव में भी एमसी मैरी कॉम के मुक्कों का दमखम बना हुआ है। इसके अलावा तुर्की के इस्तांबुल शहर में समाप्त हुई अहमबेट कुमार चैंपियनशिप में भारत की सिमरनजीत कौर ने 64, मोनिका ने 48 और भाग्यवती काचरी ने 81 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। तो कहना होगा कि फुटबॉल, क्रिकेट और उसके अलावा टेनिस में जिस तरह से भारत की हार हुई सर्बिया के खिलाफ, तो उससे ये कुछ अच्छा समाचार आया।
चलिए बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। पूर्वी एशिया से होकर गुजर रहे टाइफून मांगखुट के कारण फिलीपींस में अब तक कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। अब यह तूफान चीन की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका में चक्रवाती तूफान फ्लोरेंस के कारण उत्तर और दक्षिण कैरोलिना में अब तक कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फलस्तीनी किशोर ने एक इसराइली की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये घटना एक शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर हुई। चीन ने ताइवान पर उसकी जासूसी की कोशिशें तेज करने का आरोप लगाया है। सीरिया में सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में स्थानीय परिषद के चुनाव हो रहे हैं। 7 साल में पहली बार यहाँ कोई चुनाव हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया अजीत सारथी ने। bbchindi.com का पन्ना 24 घंटे आपके साथ है। कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।